दिन भर 22 मार्च दिन बुधवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने शुरू किया एंटी रोमियो अभियान, राज्य भर में मनचलों की धर पकड़।
इसमें कोई चिंता बात करने की बात नहीं है, ये पहले भी हुए हैं, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, स्पेशली वेस्ट यूपी में तो कई बारी गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेजेस जाना बंद कर देती हैं।
यूपी में बूचड़खानों पर भी लगाई जा रही है लगाम, कई अवैध कसाई खाने बंद। पाकिस्तान में जनगणना में अपनी गिनती अलग से ना किए जाने पर सिखों को एतराज।
बाबू लोग जो चाहते हैं वो समझते हैं कि हम बहुत सियाने हैं और वो अपनी बाबूगिरी दिखाते हैं, तो हमारे भी वो जो बाबू लोग दफ्तरों में बैठे हुए थे उन्होंने इस पे इतने तवज्जो नहीं दी।
और दुनिया जहान में आज जानेंगे कि क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट की वजह। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश में महिलाएं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों से निपटने के लिए पुलिस राज्य भर में एंटी रोमियो स्क्वाड बना रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि स्क्वाड ने आज पीलीभीत में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने ट्वीट किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड का एकमात्र मकसद लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा है और इसका मकसद मॉरल पुलिसिंग नहीं है। पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि स्क्वाड ने लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ, मिर्जापुर और रायबरेली में सघन निगरानी की है। 2007 में राजस्थान के अजमेर दरगाह पर विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने जयपुर में आज ये सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जयपुर से नारायण पारेठ।
जयपुर की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को अपराध साबित होने पर उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने इन दोनों को अधिकतम सजा देने की गुहार की थी, जबकि बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया था। इन दोनों पर वर्ष 2007 में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में धमाका करने का आरोप है। इसमें 3 लोग मारे गए जबकि 30 घायल हुए थे। बचाव पक्ष ने कहा कि वे इस फैसले के विरुद्ध अपील करेंगे। इस मामले में 7 लोगों को पहले ही बरी किया जा चुका है। दोषी करार दिए गए सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की कैबिनेट ने एक पुराने कानून के तहत 50,000 पुरुषों पर से समलैंगिकता के आरोप में दोषी ठहराने के फैसले को खारिज करने का एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को अब संसद से हरी झंडी मिलना बाकी है। 1990 में इस कानून में सुधार किया गया था लेकिन इसे वापस पूरी तरह से नहीं लिया गया था। अभी जर्मनी में अंदाजन 5,000 लोग इस आरोप में जेल में बंद हैं। जर्मनी के न्याय मंत्री हेको मास ने कहा कि अन्याय को तो नहीं मिटाया जा सकता लेकिन सरकार ऐसे लोगों को पुनर्स्थापित करना चाहती है। हेको मास ने कहा कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में गलतियां सुधारी जा सकती हैं और न्याय के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में आत्मघाती बम धमाकों की बरसी के मौके पर बेल्जियम के महाराजा किंग फिलिप ने हमले में मरने वाले लोगों और प्रभावित परिवारों को श्रद्धांजलि दी। इन हमलों में 32 लोगों की मौत हो गई थी। इस मौके पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। किंग फिलिप ने कहा कि कई लोगों ने हिंसा और नफरत का जवाब गरिमा के साथ दिया। ब्रसल्स के जेवेंटम हवाई अड्डे पर भी मौन रखकर इन हमलों में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर फिदायिन हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया था और इन हमलों के बाद से बेल्जियम में अलर्ट लागू है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में एक स्कूल में जहां शरणार्थी रह रहे थे वहां कथित तौर पर अमरीकी हवाई हमले में 30 लोगों के मारे जाने के आरोप की जांच की जाएगी। अमरीकी सेना मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता ने बताया, समाचार एजेंसी AFP को बताया कि अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रक्का प्रांत के इसी इलाके में कई हवाई हमले किए हैं। ये इलाका चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में है। पेंटागन के वरिष्ठ सूत्र ने बताया है कि अमरीका तबका शहर को IS के नियंत्रण से वापस लेने के लिए विद्रोही गुट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदद कर रहा है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के 67 देशों के मंत्रियों ने वाशिंगटन में एक बैठक की है। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की IS को खत्म करने की योजना के बारे में चर्चा की जा रही है। बीबीसी समाचार।
बाईस मार्च बुधवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के फौरन बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी और अब इसी के तहत योगी सरकार ने आज राज्य भर में एंटी रोमियो दस्ता बनाकर मंचलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
किसी चौराहे किसी लड़के को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो लड़के का मानसिक संतुलन कैसा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो खतरनाक भी हो सकता है।
जनता कानून का शासन चाहती है, पुलिस का शासन नहीं चाहती।
आज का युवा जिस तरफ जा रहा है, जो उसको आज़ादी मिली है उसका गलत फायदा उठा रहा है और समाज का एक कुरूप चेहरा दिखा रहा है लोगों को, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये पहल बहुत अच्छा है और हम इसका स्वागत करते हैं।
एंटी रोमियो स्क्वाड या रोमियो विरोधी दस्ते की स्थापना और इसकी आज से शुरू हुई कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के युवा अपने विचार प्रकट करते हुए, दिल फेंक और आवारा लोगों की अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं। पुलिस ने मेरठ से लेकर बनारस तक जगह जगह कथित रूप से आवारा घूमते लड़कों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एंटी रोमियो दल का गठन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक जावेद अहमद ने हमें बताया।
वाहिद मकसद जो है, मात्र जो मकसद ये है कि ऐसे लोग जो लड़कियों के साथ बदतमीजियां करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, उनके ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई जो है वो वही हो जो कि लॉ प्रोवाइड करता है।
जनता में उत्साह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर की ये युवा कहते हैं कि सरकार के इस कदम का वो स्वागत करते हैं।
मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा यूपी सरकार का फैसला है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर यह देखने को आता था कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं दिन प्रतिदिन, आप अखबारों को सुबह उठा करके देख लीजिए, हर जगह इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि इसमें आम लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं, उनको कुछ दिक्कत ना हो, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत ही कारगर साबित होगा।
लेकिन कई लोगों ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से लड़कों का उत्पीड़न होने का खतरा है। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि इसका नाजायज इस्तेमाल कई और तरीकों से भी हो सकता है, जैसा कि गोरखपुर के छात्र समर्थ कहते हैं।
जी, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है और इस पार्टी के पीछे एक हिंदुत्ववादी एजेंडा भी चलता है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग शहरों में छोटे छोटे समूहों के बन जाने की भी आशंका है, जो खुद से झंडा बरदार हो जाएंगे नैतिकता के और जाके युवाओं को परेशान करेंगे। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो सके, कोई खुद से एक झंडा उठा के और खुद से मोरल पुलिसिंग करने का काम कोई समूह ना कर सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2005 में इसी तरह का कदम ऑपरेशन मजनू के नाम से शुरू किया था, लेकिन इसमें पुलिस की बदनामी हुई और इसे रोकना पड़ा था। उधर राज्य सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ राज्य में कुछ मीट शॉप पर हमला करने और उन्हें जलाने की भी खबर मिली है। जावेद अहमद ने कहा कि पुलिस हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल बेबुनियाद खदशा या शुभा है या उनके जहन में इस तरह की बात है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आवारागर्दी करते हुए लड़के मिलेंगे और उस आवारागर्दी का शिकार लड़की होगी तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
मंगलवार को संसद में अपने आखिरी भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में अब बहुत चीजों की बंदी होने वाली है, बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई उनमें से एक मालूम होती है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से सत्ता में आने के फौरन बाद मंचलों को पकड़ने, बूचड़खानों को बंद करने जैसे कदम उठाए हैं, उसमें कई लोगों के मन में शायद ये सवाल उमड़ता है कि पता नहीं आगे क्या क्या हो। क्या उनकी चिंता वाजिब है? ये समझने के लिए मैंने लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की स्थानीय संपादक सुनीता एरन से बात की।
इसमें कोई चिंता बात करने की बात नहीं है, ये पहले भी हुए हैं। इसको ऑपरेशन रोमियो करके बोला गया था। जनरली उसका मकसद ही होता है ईव टीजिंग रोकने का, बिकॉज बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, स्पेशली वेस्ट यूपी में तो कई बारी गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेजेस जाना बंद कर देती हैं, एंड वहाँ पे वेस्ट यूपी में तो उसका एक क्रिमिनल टर्न हो जाता है कि भाई लड़कियाँ बिकॉज मुस्लिम बॉयज छेड़ रहे हैं या मुस्लिम गर्ल्स हैं तो हिंदू बॉयज छेड़ रहे हैं, तो इसका इतने उस पर झगड़े भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो इशू है जो कि रोमियो वाला है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है।
जी, असल में जो छवि बन जाती है वो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ आए हैं, उसके पहले और भी जो कहानियाँ आती रही हैं लव जिहाद की।
नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज। लव जिहाद इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके अंदर लव जिहाद तो इस वॉज अ इशू जिसमें दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी, एंड पुलिस उसमें देखती नहीं थी एंड ये एक तरह का प्रोपेगेंडा हुआ कि मुस्लिम लड़के यंग गर्ल्स को ले जा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं और फिर बाद में शादी करते हैं या नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये कोई बजरंग दल या कोई हिंदू वाहिनी नहीं सड़क पे उतर के कर रही है, ये कॉप्स कर रहे हैं जिसमें कुछ हमने पता करा तो कुछ महिला मतलब विमेन कॉप्स भी हैं उसमें। एंड दिस इज ओनली टू चेक द ग्रोइंग केसेस ऑफ ईव टीजिंग एंड आई रियली होप कि इसका असर हो, ऐसा ना हो एक दो दिन का ड्रामा हो और खत्म हो जाए वो मसला।
जी, मुख्यमंत्री ने कल जो संसद में अपना भाषण दिया उसमें कहा भी कि यूपी में कई सारी चीजें अब बंद होंगी।
नहीं, बंद तो ये भी हो रहा है ना, अभी ये जो काउस स्लॉटर वाला कैंपेन है ये तो भाई बैन है और उसके बाद सब गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ है, पर कई कई बारी हो जाता है कि जब गवर्नमेंट का फोकस नहीं होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना दिमाग इधर कर देता है, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बट इसमें क्या हुआ है कि अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर और वो 2002 में उन्होंने पहली बारी गोरखपुर में उन्होंने रोका था और हिंदू वाहिनी कोई भी ट्रक कोई भी इवन ट्रेन अगर आते जाते दिखाई देती थी और उनको पता चलता था कि इसमें काउ स्मगलिंग या कैटल स्मगलिंग है तो धरना डेमोन्स्ट्रेशन रोकना करते थे। अब आप ये कह लीजिए पहले जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा नज़रअंदाज करती थी, ये लोग अब कैटल स्मगलिंग के नाम पे काउ स्लॉटर के नाम पे बुफेलो वाली शॉप्स को भी बंद कर दे रहे हैं, तो उससे एक थोड़ा सा लोग परेशान है।
मुझे याद आ रहा है जब बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आए बनकर आए थे तो उस समय काफी वो सरप्राइज विजिट दिया करते थे और नई नई चीजें रोज हुआ करती थी, क्या इस तरह का माहौल कुछ प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है?
कुछ होगा क्योंकि ये थोड़े से टफ भी हैं, ये अपने को प्रूफ भी करना चाहेंगे। देखिए रैबल राउजिंग जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं होते हैं तो करना आसान होता है, आप इलेक्शन के माहौल में आपने कहा अरे जब डिमोलिशन नहीं मस्जिद का रोक पाए तो मंदिर बनवाना कैसे रोक देंगे, पर अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके जो लीगल इश्यूज होंगे जो बाकी सब मसले आएंगे जब अधिकारी फाइल ला के रखेगा तो मेरा ज्यादा ख्याल है योगी जी को भी दो बारी सोचना पड़ेगा। बट क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि एक रिलीजियस जिनका बैकग्राउंड है तो ये 19% मुस्लिम्स या जो सेकुलर मतलब आप कह लीजिए जो मिडिल लाइन लेने वाले हिंदूज हैं उनके वो थोड़ा सा एक ये लग रहा है कि अब ये क्या करने जा रहे हैं।
ये थी लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के स्थानीय संपादक सुनीता एरन। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सूचना।
सुरों की माला जब गुथती है तो बनता है गीत। फिल्मी दुनिया के वो गीत कैसे बने जो अमर हो गए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
कैसे रची रचनाकारों ने धुने और कैसे हुआ गायकी का कमाल।
वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
संगीत की मिठास से सरागोर धुनों के बुनने और गुनने की कहानी, बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला संग संग गुनगुनाओ में।
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए 26 मार्च से हर रविवार दिन भर कार्यक्रम में।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा में आप सुन रहे हैं दिन भर। और अब रुख पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 19 साल बाद जनगणना हो रही है। वहां आखिरी बार जनगणना 1998 में हुई थी, मगर इस बार जैसे जनगणना शुरू हुई उससे पाकिस्तान में बसे सिख नाराज हो गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। किस बात पर आपत्ति है उन्हें ये समझने के लिए मैंने आज पाकिस्तान सिख काउंसिल के प्रमुख और पाकिस्तान के पंजाब सूबे की विधानसभा में चुनकर आने वाले पहले सिख विधायक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से बात की।
सिख पाकिस्तान की हर जगह पे नजर आता है, पार्लियामेंट में नजर आता है, फौज में नजर आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नजर आता है, पुलिस में नजर आता है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, एवरी फील्ड आपको सिख नजर आता है और बहुत तगड़े बिजनेसमैन भी है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब ये फॉर्म डेवलप हुआ डिजाइन हुआ तो हमारे वो जो बाबू लोग जिनको आपकी तरह भी बाबू लोगों की मोनोपोली है ना जी, बाबू लोग जो चाहते हैं वो समझते हैं कि हम बहुत सियाणी हैं और वो अपनी बाबूगिरी दिखाते हैं, तो हमारे भी वो जो बाबू लोग दफ्तरों में बैठे हुए थे उन्होंने इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी और उन्होंने इसको वैसे ही फॉर्म को कि उन्होंने एक यार्डस्टिक बना दी कि एक यार्डस्टिक की है कि अगर आपकी तादाद आपके रिलीजन के जो लोग हैं उनकी तादाद एक सिग्निफिकेंट नहीं है और उसके नंबर्स इससे कम है तो वो उसको कैटेगराइज कर रहे थे अदर्स में, तो अदर्स में जैनमत भी आ जाएगा, पारसी भी आ जाएगा, बुद्धिस्ट भी आ जाएगा, सिख भी आ जाएगा। हमारा जो एतराज था सिख कौम का, सिख मजहब का, आप हमें इस तरीके से कैटेगराइज अदर्स में ना करें, बिकॉज सिख मजहब का जो स्टार्ट है वो पाकिस्तान की धरती से है। 500 साल पहले गुरु नानक पातशाह का जन्म इसी धरती पे हुआ, उनकी आखिरी आरामगाह भी इसी धरती में है। तो सिख मजहब को आप अदर्स में कैटेगराइज करके सिखों के साथ ज्यादा करें और सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो कल सिंध हाईकोर्ट में हमारी कुछ सिख कम्युनिटी गई थी, आज मुझे भी पता लगा थोड़ी देर पहले कि पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही वर्डिक्ट दिया है, आज उनकी तरफ से भी यही आया है कि जी सिख मजहब का खाना अगर इस मरहले में, तो अब क्योंकि ऑन ग्राउंड है काम शुरू, अगला मरला जैसे शुरू होता तो स्वाम में सिख मजहब का खाना डाल दिया जाए। और बट इसके साथ जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसको सीरियसली सिंसियरली लिया है और दे आर थिंकिंग इट कि जैसे ही अगला मरला आता है तो उसमें आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये सिख का कॉलम है वो उसमें ऐड हो जाएगा।
एक सवाल जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके मन में आता है, वो अक्सर खबरों में देखते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, काफ़ी बड़ी आबादी है, लगभग 35-40 लाख के बीच हिंदू बताए जाते हैं वहाँ पर, आबादी का 2% हिस्सा, उनके बारे में बड़ी निगेटिव न्यूज़ आती है कि काफ़ी परेशान रहते हैं, और उसका सबूत ये भी मिलता है कि लोग वहाँ से भाग कर भारत की तरफ आते भी हैं। सिखों को लेकर क्या स्थिति है वहाँ पर, आप क्या कहेंगे?
दिस इज अ टोटली नेगेटिव परसेप्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान से कुछ फैमिलीज, अनफॉर्चुनेटली जैकाबाद से कुछ फैमिलीज गई थी इंडिया, बट दे आर बैक टू पाकिस्तान। मैं उनसे मिल के आया हूँ, उन्होंने कहा जी जो इज्जत मान हमें यहाँ पे मिलती है वहां पे नहीं मिलती। सो इस वक्त ये कहना, अगर ये सारे मसाइल होते, हिंदू यहाँ पे खुश ना होता, हिंदू को प्रॉब्लम होती, तो इतनी बड़ी तादाद 5-6 मिलियन हिंदू पाकिस्तान में ना होता। पाकिस्तान में अभी अब देखे सिंध असेंबली में रिसेंटली फोर्स कन्वर्जन पे एक बिल पास हुआ, नंबर वन। नंबर टू, कल परसों ही जो हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो गया, आप ये देखे कि वजीर आजम पाकिस्तान दिवाली के फंक्शन में इस्लामाबाद से उठते हैं जाके कराची में हिंदुओं के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं।
पर कई लोग ये भी तो कह सकते हैं ना अरोड़ा साहब कि ये जो है एक तरह से सरकार की कोशिश है कि वो इतना ज्यादा अचानक से हिंदुओं पर ध्यान दे रही है, शायद वो अपनी छवि बदलना चाहती है।
ऐसा हरगिज नहीं है जी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है, कुछ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करती है, कुछ गवर्नमेंट थोड़ा सा कम करती है। हाँ, आप एक बात कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब ने बिफोर इलेक्शन जो बात की थी और हमारा जो मैनिफेस्टो भी था, उस मैनिफेस्टो में हमने ये कहा था कि हम अपनी माइनॉरिटीज को कैरी करेंगे। सो हमारी ये गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था, ना तो हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, ना हम किसी को जितला रहे हैं, ना हम किसी को दिखा रहे हैं।
ये थे पंजाब विधानसभा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के विधायक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध सामान्य कराने के लिए लंदन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। दोनों देशों ने इसे सकारात्मक बातचीत बताया। दोनों ही देश चरमपंथी हमलों से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों की जड़ में कौन से मुद्दे हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति लाने के लिए जारी प्रयासों में क्या भारत को भी बातचीत में शामिल करने की जरूरत है? पाक अफगानिस्तान की अनबन मिटाने की कोशिश कितनी सफल होगी? इसी की पड़ताल कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा आज के दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भौगोलिक तौर पर दो अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक लिहाज से दोनों के तार जुड़े हुए हैं। यूं तो दोनों देशों के संबंध लंबे अरसे से तनाव के शिकार हैं, लेकिन ये तनाव पाकिस्तान के सिंध में लाल शहबाज कलंदर की मजार पर हमले के बाद ज्यादा बढ़ गया।
यहाँ जो सिक्योरिटी का इंतजाम है ना, वो बिल्कुल नाकस है, और यहाँ जो गैर रजिस्टर्ड मुसाफिर खाने है ना, उन पे कड़ी अगर नजर रखी जाए ना, तो ऐसे जो हादसात है ना, वो आइंदा ना आ सकते हैं।
पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी सरहद की कड़ी निगरानी नहीं कर रहा और चरमपंथी गुटों को बढ़ावा दे रहा है।
अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर इसी तरह के आरोप लगाता रहा है और यही वजह है कि लाल कलंदर पर हमले के बाद जब पाकिस्तान ने 76 संदिग्ध चरमपंथियों की सूची अफगानिस्तान सरकार को सौंपी तो उन्होंने इससे भी लंबी सूची पाकिस्तान को थमा दी। हमले के बाद से ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगती करीब 1100 किलोमीटर लंबी सरहद को बंद कर दिया। सैकड़ों की तादाद में ट्रकों के पहिए सीमा पर थम गए, हजारों की तादाद में लोग सीमा पर फंस गए। लेकिन 19 दिनों की सीमाबंदी के बाद सिर्फ 2 दिनों के लिए ही नरमी देखने में आई जब पाकिस्तान में फंसे हुए अफगान शहरियों को वापस जाने की मंजूरी मिली।
हम मजबूरी के आलम में यहाँ हैं। पाकिस्तान को हमारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। यहाँ हमने 40 साल गुजारे, हम बच्चे थे और अब बूढ़े हो गए, लेकिन अब मजबूरी की वजह से जा रहे हैं।
14 मार्च को दोनों देशों के संबंध सामान्य करने के लिए लंदन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हनीफ अतमार ने शिरकत की। मेजबान ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर मार्क लायल ग्रांट ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की। सर मार्क लायल ग्रांट पाकिस्तान में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर रह चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान के सियासी व सरकारी हलकों में काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। ये वही सर मार्क लायल ग्रांट हैं जिनके पुरखों के नाम पर पाकिस्तान के लायलपुर शहर का नाम रखा गया। वर्तमान में इस शहर को फैसलाबाद कहा जाता है। लंदन में हुई बातचीत का तत्काल परिणाम तो नहीं आएगा, लेकिन इससे दोनों देशों के प्रतिनिधियों को आमने सामने बैठकर एक दूसरे के पक्ष को सुनने और समझने का मौका मिला। पेशावर में वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई कहते हैं,
अभी सिर्फ दोनों फरीक कह रहे हैं कि अच्छी बातचीत हुई, कुछ फैसले हुए। अब ये है कि नतीजे क्या होंगे। एक तो वो पाकिस्तान ने जो बॉर्डर को बंद किया हुआ है तोरखम और चमन, उसको खोलने की बात की है अफगानिस्तान ने। फिर जो अफगान महाजरीन है पाकिस्तान में, उनकी वापसी का मसला है, कैसे जाएं, कब तक रहें, और फिर और भी काफी मौजूदात हैं। जिस तरह पाकिस्तान की मदद से अफगान हुकूमत चाहती थी कि वो तालिबान से अमन मुजाकरात करें, वो अभी तक नहीं हो सके। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को पनाह मिली है। इस तरह के मसले हैं कि इनको हल करना आसान नहीं है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बिगड़े संबंधों की जड़ों में एक मामला सीमा रेखा को लेकर भी है और वो रेखा है डूरंड रेखा। इस डूरंड रेखा को अफगानिस्तान नहीं मानता तो इसका क्या इतिहास है और उसमें कहां कौन सा पेच है, मैंने पूछा पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान से।
1893 में अमीर अब्दुलरहमान ऑफ काबुल और जो ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी थे सर मार्टिमर ड्यूरंड, उनके दरमियान ये तय किया गया कि अमीर अब्दुलरहमान की जिंदगी तक सीमा की हदबंदी कर रहे हैं ये वैलिड रहेगी और अमीर के मरने के बाद इसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अफगानिस्तान में सम हाउ ये मिथ चला आ रहा है, ये जो माहिदा हुआ था ड्यूरेंट लाइन का, ये 100 साल के लिए था। उस एतबार से इसको 1993 में खत्म हो जाना चाहिए था। अफगान एक और दलील देते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये माहिदा हुआ था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, अब ब्रिटिश इंडिया तो है नहीं, लिहाजा माहिदा खत्म हो गया। इंटरनेशनल लॉ के तहत एक सक्सेसर स्टेट का तस्वर भी होता है, उसी एतबार से पाकिस्तान भी ब्रिटिश इंडिया की सक्सेसर स्टेट है। तो ये माहिदा जो है उस लिहाज से अफगान कहते हैं कि ये खत्म हो गया और इंटरनेशनल लॉ कहता है कि सक्सेसर स्टेट के साथ जो है वो माहिदा चलता रहेगा। और वो ड्यूरेंट लाइन जिसको कि 4 अफगान बादशाहों ने एंडोर्स किया है, उसको आप हर बार क्यों चैलेंज करते हैं।
तो ये तो बात हुई पाकिस्तान व अफगानिस्तान को अलग करने वाली डूरंड रेखा की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चरमपंथी हमलों का है। अफगानिस्तान व पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे पर चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में भारत के अमृतसर में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर चरमपंथी संगठनों को पनाह देना बंद करे और वो रकम जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए देना चाहता है इसका इस्तेमाल वो अपने यहाँ चरमपंथी संगठनों को खत्म करने में करे।
Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund could be very well used for containing extremism.
दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार आतंक की बड़ी घटनाओं का जिम्मेदार देश के भीतर चरमपंथी संगठनों की बजाय अफगानिस्तान या फिर भारत को ठहरा देती है। पिछले साल भारत प्रशासित कश्मीर में उड़ी कैंप पर हमले के बाद न सिर्फ पाकिस्तान व भारत के बीच तल्खियां बढ़ी बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाकिस्तान अलग थलग नजर आने लगा। भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी इस्लामाबाद में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सम्मेलन में शिरकत करने से इनकार कर दिया और सार्क सम्मेलन को टालना पड़ा था। चरमपंथ के मुद्दे पर अफगानिस्तान का पाकिस्तान को लेकर वही रवैया है जो कि कमोवेश भारत का है, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू कहते हैं।
इसमें खलल जो है वो पाकिस्तान के रवैये से, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में सालों से चल रहा है। जब से तालिबान की शिकस्त हुई 2001 नवंबर में, तब वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गए और वहाँ उनको सेफ सेंचुरीज मिली, वहाँ ट्रेनिंग मिली और उसके बाद से ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा पाकिस्तान के समर्थन का तालिबान को, तब तक कुछ भी क्षेत्रीय देश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोशिश कर ले, अफगानिस्तान की स्थिति सामान्य नहीं होगी।
ऐसी सूरत में अफगानिस्तान व पाकिस्तान में शांति लाने के लिए जारी प्रयासों में क्या भारत को भी बातचीत में शामिल करने की जरूरत है? रहीमुल्ला यूसुफजई कहते हैं,
जिस तरह के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, तो उसमें तो कोई इम्कान नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो कोई मेडिएशन करेगा। बल्कि पाकिस्तान को तो ये भी एतराज है कि हिंदुस्तान को काफी एक स्पेस मिल गई है अफगानिस्तान में, अफगान हुकूमत बहुत करीब चली गई है हिंदुस्तान के और पाकिस्तान से दूर चली गई है। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है NDS और हिंदुस्तान के जो खुफिया इदारा है उसके दरमियान बड़ा तआवुन है और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दोनों खुफिया इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है अफगानिस्तान की हुकूमत भी पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाती है कि ISI जो है वो अफगानिस्तान को डिस्टेबिलाइज कर दे। फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के हवाले से या बातचीत करेंगे या तआवुन करेंगे।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के इस त्रिकोणीय संवाद की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच कड़वाहट को कम करना आसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को सही मायने में चरमपंथ को हराना है तो उसे एक समग्र रणनीति बनाकर काम करना होगा जिस पर सेना व नेता दोनों सहमत हों और दोनों ही साथ मिलकर सुनिश्चित करें कि वो देश के सभी हिस्सों को सुरक्षित बनाने में अपने उत्तरदायित्व निभाएंगे।
अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंध पर कैसी लगी मोहनलाल शर्मा की ये कार्यक्रम दुनिया जहान? हमें लिखिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। और आइए एक नज़र डालते हैं अपनी वेबसाइट bbchindi.com पर, जिसकी मुख्य खबर है असदुद्दीन ओवैसी के एक इंटरव्यू के बारे में जो आज हमारे दफ्तर आए थे और उन्होंने अयोध्या विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है बातचीत करने का बाहर, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बातचीत की कोई सूरत नहीं बची है, इस बारे में 7 बार बातचीत विफल हो चुकी है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। पूरी बातचीत पढ़ने के लिए या देखने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और सभा समापन से पहले मुख्य समाचार हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में महिलाएं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों से निपटने के लिए पुलिस राज्य भर में एंटी रोमियो स्क्वाड बना रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा देना है, न कि मॉरल पुलिसिंग करना। 2007 में राजस्थान के अजमेर दरगाह पर विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए देवेंद्र गुप्ता और भवेश पटेल को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। जर्मनी की कैबिनेट ने एक पुराने कानून के तहत 50,000 पुरुषों को समलैंगिकता के आरोप में दोषी ठहराने के फैसले को खारिज करने के लिए एक बिल को मंजूरी दे दी है। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही इस सभा का समय समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम में तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।